ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है संविधान हत्या दिवस आपातकाल के 50 साल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
उम्मीदों के साए में भविष्य के सुंदर सपने संजोने वाली जिंदगी के हिस्से में कुछ रातें ऐसी भी आती हैं जो बहुत काली, गहरी और भयावह होती है। ऐसी रात अपने साथ दुख, दर्द और त्रासदी लेकर आती है जिसका असर दशकों तक रहता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के हिस्से में एक ऐसी ही काली रात आई थी। तारीख थी 25 जून 1975 की, जब लोग नई सुबह में कुछ बेहतर होने की उम्मीद लिए नींद के आगोश में थे, तभी करोड़ों देशवासियों की भावनाओं पर कुठाराघात करते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए घोषणा की गई आपातकाल की। 25 जून 1975 की ये वो रात थी जब भारत का लोकतंत्र सिहर उठा। इस दिन संविधान को कुचला गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया गया, बोलने की आजादी छीन ली गई, प्रेस पर सेंसरशिप का ताला लग गया, जबरन नसबंदी कराई गई और मौलिक अधिकारों को हथकड़ी पहना दिया गया। 25 जून की रात को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। ये फैसला बिना कैबिनेट की मंजूरी के रातों रात लिया गया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने मध्य रात्रि में इस पर हस्ताक्षर किए और देश आपातकाल के अंधेरे में डूब गया। 26 जून की सुबह आकाशवाणी पर मधुर संगीत रुक गया और वो उद्घोषणा हुई जिसने भारत में संविधान की हत्या कर दी।
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है।
शहरों से लेकर गांव-गांव तक आपातकाल की आहट पहुंची। आपातकाल सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं बल्कि हर उस आवाज के खिलाफ थी जो सत्ता से सवाल पूछती थी। विपक्षी नेताओं जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को रातों रात जेल में कैद कर लिया गया। जेलें इतनी भर गईं कि जगह कम पड़ने लगी। इस तानाशाही रवैये के खिलाफ गली, नुक्कड़, चौक चौराहे पर लोकतंत्र की बहाली के नारे लगाए जाने लगे।
हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे, उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा, मैं भी सत्याग्रह उस दिन करूंगा और वहां चाहे मेरी गिरफ्तारी हो चाहे जो भी हो, अब न्याय होगा, जमाना पलटा है, ये क्रांति होगी, ये सारा संघर्ष चलेगा।
वो ऐसा दौर था जब मानवता का चीर हरण हो रहा था, संवेदनाएं मर गई थी, जीवन जिया नहीं जा रहा था, सिर्फ सांसें ली जा रही थी। जनता के वोटों से चुनी गई सरकार ने अपने हितों के लिए करोड़ों नागरिकों को असमंजस और अंधकार के दलदल में फंसा दिया। उस दौर में जेल में डाले गए पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दौर की वानगी अपनी कविता में कुछ इस तरह पेश की है।
के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया, संघ को कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा।
भारत के जिस संविधान पर हमें गर्व था, आपातकाल ने उसकी हत्या कर दी। वो सिर्फ एक पुस्तक रह गई और उसमें लिखे अनेक नागरिक अधिकार सिर्फ अक्षर, जो बेबसी से देशवासियों को देख तो रहे थे लेकिन सरकार की कुत्सित मानसिकता के कारण मौन में रहकर सिर्फ सिसकियां लेने को विवश। उस दौर में अथक परिश्रम और कठिन संघर्ष करने वाले तब के स्वयंसेवक और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के काले अध्याय यानी आपातकाल संविधान हत्या दिवस को कुछ ऐसे याद किया।
यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। इन अत्याचारों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था।
आकाशवाणी के बहुत सारे मेरी तरह युवा श्रोताओं ने उस काले अध्याय के बारे में या तो पढ़ा होगा या सुना होगा। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने उसे जिया भी होगा। आज जब इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तब आपातकाल की त्रासदी पर चर्चा के लिए हमने ऐसे खास व्यक्ति को आमंत्रित किया है जिन्होंने उस दौर में भी पत्रकारिता की थी और संविधान हत्या के उस दंश को झेला भी था। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में देश में वो आपातकाल लगा था।
25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच भारत के संविधान को डिरेल कर दिया गया था। सच्चाई ये थी कि देश में छात्र आंदोलन बहुत जोर पकड़ रहे थे। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था, जिस समय उसमें एक युवा नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। वो पर्चे लिखते थे, पैम्फलेट बनाते थे। साथ साथ में बिहार और उत्तर प्रदेश में भी छात्र आंदोलन चल पड़ा था। तो उस समय जो ये छात्र आंदोलन हुआ, वो जो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी उसके विरोध में था, बेरोजगारी के खिलाफ था। छात्र विश्वविद्यालयों में अपनी डिग्रियां फाड़ते थे क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं था, युवकों को नौकरियां नहीं मिल रही थी। ये एक स्थिति उस समय धीरे धीरे बन रही थी। इसी बीच में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ एक चुनाव याचिका चल रही थी। उसका मुद्दा ये था कि जिसको हम कहते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस की गई है इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में, उसके खिलाफ उस समय के एक बड़े वरिष्ठ समाजवादी नेता राजनारायण जी ने याचिका दर्ज की थी। और राजनारायण जी की तरफ से उस समय एक वरिष्ठ वकील थे शांति भूषण, वो इस केस को लड़ रहे थे। अब इन सब के बीच में ये एक जजमेंट आ गई जिसमें इनका चुनाव को रद्द कर दिया गया। तो जो जिसको ट्रिगर पॉइंट कहते हैं वो था श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाना। अब उस समय प्रश्न ये उठा कि अगर चुनाव रद्द किया गया है तो उसके लिए अगर प्रधानमंत्री को अपील करनी है हाईकोर्ट में, लेकिन उन्हें एक बार तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब उस समय जो उनके सलाहकार थे उनका यह मानना था कि ये आपके खिलाफ एक षड्यंत्र है, अगर आप त्याग पत्र देंगी तो फिर आप कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी, तो इसलिए त्याग पत्र न दिया जाए। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो मुख्य सलाहकार थे उसमें उनके सुपुत्र संजय गांधी शामिल थे। उस पर जितनी फिल्म भी बनी है इमरजेंसी पर, उसमें भी दिखाया गया है कि संजय गांधी ने किस तरह से अपनी माताजी को कहा कि आप रिजाइन नहीं करेंगी और देश में आपातकाल लगाना चाहिए। तो उस समय के जो कानून मंत्री थे सिद्धार्थ शंकर रे, उनको बुलाकर कहा गया कि आप एक ड्राफ्ट बनाइए कानूनी तौर पर जिसके अंतर्गत हम इमरजेंसी लगाएं। तो इमरजेंसी लगाने का निर्णय जो हुआ उस समय आधी रात को उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब को उठाया गया और उनसे वो जो इमरजेंसी की घोषणा का प्रोक्लेमेशन कहते हैं जिसको, वो साइन करवाया गया और रात 12 बजे से इमरजेंसी को लागू कर दिया गया।
आपने अपने भी बताया कि देश को आंतरिक खतरा था, ये इंदिरा जी ने बोला था राष्ट्रपति को। ये खतरा क्या राजनीतिक विपक्षी पार्टियों के नेताओं से था? क्योंकि उस दौर में बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और कहा गया था कि इन्होंने ही देश की शांति को भंग किया है।
जो बात हम अभी कर रहे थे, जब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट आई तो देश में रोष और बढ़ गया और उसके चलते विपक्षी दलों ने उनके त्यागपत्र की मांग की। छात्र आंदोलन के चलते दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा हुई और वो 24 जून को हुई। मैं पत्रकार के नाते रामलीला मैदान में उस सभा को मैंने कवर किया था। वहां पर सब राजनेता जितने थे विपक्ष के, उनके भाषण हुए। इस पूरी रैली का नेतृत्व कर रहे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने उसमें जो भाषण दिया उसको एक आधार बनाया इंदिरा गांधी ने। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये एक पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की कविता की और इसका अर्थ निकाल कर ये कहा गया इंदिरा गांधी की ओर से, जो उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट टू द नेशन में भी कहा कि मेरी सत्ता का तख्ता पलटने की कोशिश हो रही है। जयप्रकाश नारायण जी सेना को भड़का रहे हैं, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुझे मजबूरन देश में आपातकाल लगाना पड़ता है। तो विपक्ष के नेता तो अपनी एक भूमिका निभा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, रात 12 बजे से धरपकड़ शुरू हो गई। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, हम लोग वो रैली कवर करके अभी घर पहुंचे ही नहीं थे, फोन आ गया कि ऐसी सूचना है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को राउज एवेन्यू वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद तो लगातार फिर ये हुआ कि मदरलैंड के ऑर्गेनाइजर के एडिटर जो के आर मलकानी गिरफ्तार हो गए, तो दिल्ली में धरपकड़ चली। तो दिल्ली में लगातार सारी रात जितने भी नेता हो सकते थे या आरएसएस के लीडर थे उनके छापे मारकर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये रात भर चला। तो उस रात की तो ये कहानी है कि सुबह 4 बजे तक बहुत सारे नेता, दिल्ली की बात अगर करें तो गिरफ्तार हो गए थे। बहुत सारे नेता एक संसदीय मंडल के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के चलते बेंगलोर में थे, तो उन सबको बेंगलोर में ही पकड़ लिया गया। उसमें जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, मधु दंडवते, ऐसे कई नेता जो उस समय विपक्षी सांसद थे उनको वहीं पर ही पकड़कर बेंगलोर की भी जेल में डाल दिया गया।
आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्रीनगर में क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित हुए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तारिक राठौर।
जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान हत्या दिवस के बारे में आम नागरिकों को जागरूक करने के महत्व और आवश्यकता को उजागर करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में संविधान हत्या दिवस समारोह को संबोधित किया। श्रीनगर में भाजपा मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कौल ने गंभीर प्रभाव पर प्रकाश डाला।
आज जो कांग्रेस कहती है कि हम संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, तो उनको याद कराते हैं कि भाई तुम क्या संविधान को बचाओगे, तुमने तो 75 में संविधान की धज्जियां उड़ाई थी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संविधान हत्या दिवस मनाने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के दृढ़ संकल्प को मजबूत करने में मदद मिलती है।
चंदन साहब, आपने दिल्ली की बात की और ये भी बताया कि दिल्ली में किस तरह बहुत सारे नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने रैलियां की, जनता से संवाद करने की कोशिश की। दिल्ली की ही एक घटना घटी थी तुर्कमान गेट से जुड़ी। इंदिरा सरकार का तात्कालिक आदेश ये था कि दिल्ली को झुग्गियों से मुक्त किया जाए और जब ये आदेश आया लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने विरोध प्रदर्शनकारियों के सामने आग जला दी। इस तरह का व्यवहार किया, उन पर डंडे बरसाए गए कि वहां कई लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। टंडन साहब, आप खुद भी पत्रकार थे उस समय और कई मीडिया संस्थानों से भी जुड़े हुए थे। आपातकाल में मीडिया का गला घोंट दिया गया था, संपादकों पर अंकुश लग गया था और कुछ को कारावास भी भेज दिया गया था। छपता वही था जो सरकार चाहती थी। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या थी अखबारों की वास्तविक स्थिति, संपादकों को क्या स्वतंत्रता थी और उस समय क्या कुछ चल रहा था मीडिया जगत में।
25 जून की रात 12 बजे के बाद अखबारों की कम्युनिकेशन लाइन बंद कर दी गई थी, कईयों की बिजली काट दी गई थी, क्योंकि उस रात जो अखबार छपने वाले थे वो अगले दिन देश की जनता के सामने आने वाले थे। तो रात को ये परिस्थिति पुलिस ने पैदा की कि अगले दिन अखबार ना छपे और अधिकांश अखबार नहीं छपे। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में एक बहुत अनूठा एक तरीका निकाला, उन्होंने अखबार के पहले पन्नों को खाली सफ़ेद छोड़ दिया, जिससे जनता को समझ में आ जाए कि हम छापने की स्थिति में नहीं हैं। तो इसलिए बीजी वर्गीस जो उस समय के उसके संपादक थे, ये उनका दिमाग चला कि हम अखबार को खाली छोड़ देते हैं और जनता अगले दिन सुबह समझ जाएगी, क्योंकि रेडियो पर जो चल रहा था वो केवल सरकारी वक्तव्य चल रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ये इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, देश में व्यवस्था बना रहे हैं। तो एक प्रोटेस्ट तो उसी रात को हो गया था। तो हर दफ्तर में एक सेंसर को बिठा दिया गया था। सेंसर के लोग कोई आसमान से नहीं टपके थे, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है सरकार का, जो सूचना तंत्र था सरकार का, उसके अधिकारियों को ही हर अखबार के दफ्तर में एक डेस्क पर बिठा दिया गया था। और ये था कि जो भी पत्रकार या रिपोर्टर खबर बनाएगा, वो खबर पहले वो जो सेंसर अधिकारी है उससे वो पास की जाएगी। उसमें कोई भी ऐसी बात जो उस समय की प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, या हम कहें कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, या ऐसा कुछ भी नहीं छप सकता। जुडिशरी को भी डिरेल कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे, तो कोई भी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती थी। तो एक तरफ तो जो देश की बड़ी न्यूज़ एजेंसी थी उनके रात को तार काट दिए गए और अगले दिन उनको कहा गया कि आप इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करिए कि आप अपनी मर्जी से अपनी एजेंसी को एक नई एजेंसी में मर्ज कर रहे हैं, उसका नाम रखा गया समाचार। तो समाचार एजेंसी बन गई, पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती, इन सब को बंद कर दिया गया। तो मीडिया पर ये जो अंकुश चला ये लगातार चलता रहा, पूरे पूरे इमरजेंसी के दौरान चला।
इन किस्सों में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा था और मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसको भी एक तरह से बंद कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर कुछ नहीं छापा था। 50 वर्ष आपातकाल के पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में किन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ओम अवस्थी।
आपातकाल की भयावता और क्रूरता को जनता के बीच रखने के लिए भाजपा की ओर से आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में जनपदवार मंत्रियों ने जनसंवाद किया। इस क्रम में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था।
आज का दिन हम सब के लिए संविधान बचाने का एक दिवस के एक संकल्प के रूप, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संकल्पों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक अवसर देता है। कैसे कैसी प्रताड़ना हुई हमें आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कौन लोग हैं जो देश के साथ धोखा करने वाले लोग हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मुरादाबाद में संगोष्ठी को संबोधित करते हुए इस दिन को लोकतंत्र के इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण दिन करार दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतापगढ़ और प्रयागराज, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में संगोष्ठियों को संबोधित कर तत्कालीन सरकार की खामियों को उजागर किया और आपातकाल को भारत के इतिहास का दुखद दौर बताया।
टंडन साहब, अगर आपातकाल के दिनों की चर्चा करें तो एक और आपातकाल के साथ जुड़ा प्रसंग है, वो है जबरन नसबंदी का। उसकी भी खूब चर्चा रही और ये भी कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर सरकार उस समय लोगों को सड़कों से पकड़ पकड़ कर नसबंदी कर रही थी। क्या मामला था वो?
जो जबरन नसबंदी का जो अभियान चलाया उसने, उसमें जितने भी सरकारी तंत्र था उनको टारगेट दिए गए कि आपको एक सप्ताह में इतने 100 नसबंदी करनी ही है। चाहे उसमें ये भी था कि उनको कुछ जो नसबंदी कराएगा उसको आप पैसे भी दीजिए, लेकिन टारगेट पूरे करने हैं। उसके चलते ये जो अभियान था, इतना इससे डर पैदा हुआ और विशेष तौर से गांव में। इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है या उस समय था, सबसे ज्यादा आक्रोश उस समय गांव के और अल्पसंख्यक समुदाय में था। इतना आरोश था कि कई लोग तो आत्महत्या करना मंजूर कर रहे थे, लेकिन वो नसबंदी नहीं करवाना चाहते थे। नसबंदी के जो आंकड़े हमने देखे, मैंने तो प्रत्यक्ष भी देखा, गांव में जाकर भी देखा, लेकिन 75-76 में कुल 26.42 लाख नसबंदी प्रक्रिया हुई। 76-77 में ये संख्या बढ़कर 81,32,000 हो गई। सो 2 वर्षों में 1 करोड़ नसबंदी की गई। कई राज्यों में तो नसबंदी को जो असेंशियल सर्विसेज के साथ भी जोड़ दिया गया। यानी जो जरूरी सेवाएं उनके साथ भी जोड़ दिया गया। मैंने स्वयं गांव में देखा, गांव में मैं उत्तर प्रदेश के गांव में घूमा था तो लोगों ने कहा कि हम खेतों में छुपे रहे कई कई दिन, हमारी महिलाएं आकर हमको खाना दे जाती थी लेकिन हम खेतों से नहीं निकल सकते थे क्योंकि खेत से निकलने का अर्थ हम पकड़े जाएंगे और हमारी जबरन नसबंदी होगी। मेरा ऐसा मानना है कि जिसको हम संविधान का काला अध्याय कहते हैं उसमें ये चैप्टर जो है जबरन नसबंदी का, क्योंकि ये लोगों के मौलिक अधिकार पर हनन था, इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंदिरा गांधी को अगर हुआ तो ये नसबंदी कार्यक्रम से हुआ।
टंडन साहब, आपने चर्चा की कि ये जो जबरन नसबंदी थी ये भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन था। उस दौर में मौलिक अधिकार लगभग समाप्त कर दिए गए थे या सरकार ने छीन लिए थे। आपसे ये समझना चाहेंगे कि लोगों को किन किन चीजों की मनाही कर दी गई थी कि आप ये नहीं कर सकते हैं और आप सिर्फ यही कर सकते हैं।
देखिए, प्रोपेगेंडा इस बात का किया गया आपातकाल में अब गाड़ियां रेल जो हैं वो समय पे चल रही हैं, लोग अपने ऑफिस में समय पर आ रहे हैं और लोग अनुशासित हो गए हैं, बस स्टैंड पर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, लेकिन ये सब डर के कारण था, जनता में इतना डर था। तो ऐसे में डर के चलते जो भी लोग, जिसको मैंने कहा कि नियंत्रण किया गया, वो उसमें लोग अपने ऑफिस में जाते हुए डरते थे कि कहीं ऑफिस से ही पकड़कर नसबंदी के लिए न ले जाएं, क्योंकि जो अविवाहित पुरुषों की भी नसबंदी की गई क्योंकि टारगेट पूरे करने थे। तो पूरे देश में जो वातावरण था वो डर का था, बोल सकते नहीं थे लोग, बस स्टॉप पर, बसों में, ट्रेन में बोलेंगे मालूम नहीं कि कहाँ कोई पुलिस वाला बैठा है, इस सब में लोग बहुत डर के माहौल में रहे।
श्रमिकों से लेकर फिल्मी कलाकारों तक पाबंदियां लगाई गई और ये भी कहा गया कि कुछ एक खास कलाकारों को टारगेट तक किया गया, क्या स्थिति थी?
देखिए, उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे विद्याचरण शुक्ल, वो चाहते थे कि देश में वही रेडियो पर जो गाने बजेंगे वो वही है जो सरकार के पक्ष के हैं। तो उन्होंने किशोर कुमार को कहा कि आप जो है इस सरकार के पक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित करो जिसमें आप सरकार की तारीफ में गाने गाओ। तो उन्होंने मना कर दिया। जब मना किया तो रेडियो पर किशोर कुमार के सारे गाने बजाने बंद कर दिए गए और एक विद्या सिन्हा नाम की एक बड़ी प्रमुख कलाकार थी, अभिनेत्री थी, उसके साथ अभिजी शुक्ला ने कुछ जबरदस्ती करके उनसे कुछ कार्यक्रम करवाने चाहे, उसका भी विरोध हुआ। तो फिल्म इंडस्ट्री में जो विरोध था दबा हुआ था, फिर बेचारे किशोर कुमार हार कर उनको सरकार के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने फिर दिल्ली में एक कार्यक्रम सरकार के पक्ष में अपना फिल्म शो किया था। तो फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी तरह से त्रस्त।
और फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड का जो गढ़ है मुंबई, वहां पर आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर किस तरह का आयोजन हुआ, पूरे महाराष्ट्र में किस तरह का आयोजन हुआ, बता रहे हैं संभाजी नगर से हमारे संवाददाता समरजीत ठाकुर।
मुंबई में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में संविधान हत्या दिवस और आपातकाल के दौरान लड़ने वालों की याद में लोकतंत्र दिन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह लोकतांत्रिक देश के लिए काला दौर था।
50 years ago, this day was the darkest day in the Indian democracy. So after 50 years, the dark days to be remembered. For one single thing that it should not repeat again. The democracy should be the supreme system.
महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मुख्यमंत्री की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। धुले, परभनी, नागपुर और बीड जिलों में सम्मान समारोह आयोजित किए गए।
हर बुरी चीज का अंत एक न एक दिन होता ही है, ठीक उसी तरह आपातकाल के काले अध्याय का अंत 21 मार्च 1977 को हुआ। 16 से 20 मार्च 1977 के बीच लोकसभा चुनाव हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी की हार हुई और 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता जनार्दन ने इंदिरा सरकार को सत्ता से दूर कर आपातकाल पर अपना फैसला सुना दिया था। उस दौर में अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी तपस्या और दूरदर्शिता से देश को नई दिशा देने का संकल्प लिया। राष्ट्र निर्माण का वो दृढ़ संकल्प लिया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी के आपातकाल विरोधी संघर्षों को एक पुस्तक में समाहित किया गया है, द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फूज्ड अ लीडर। इस किताब में उस दौर के दस्तावेजों, घटनाओं और नरेंद्र मोदी के साथ काम करने वाले आरएसएस कार्यकर्ताओं के अनुभवों को शामिल किया गया है। इस पुस्तक की प्रस्तावना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने लिखी है, जो स्वयं भी उस दौर में आपातकाल का विरोध करने वालों में अग्रणी रहे। पुस्तक का विमोचन आज शाम राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि उस दौर में प्रधानमंत्री का संघर्ष प्रेरक पुंज की तरह है।
द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फोर्ज अ लीडर, ये नरेंद्र मोदी जी के आपातकाल के दौरान एक युवा संघ के प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर 19 माह तक जो आंदोलन जेपी के नेतृत्व में चला, नानाजी देशमुख के नेतृत्व में चला, वो आंदोलन में एक युवा कार्यकर्ता के नाते मोदी जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, मीसाबंदी जो थे उनके घर में गए, उनकी परिजनों की पूछताछ की, उनके इलाज की व्यवस्था की, कई सारे गुप्त अखबार निकलते थे उसको बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में, महिलाओं में बांटने का काम किया और गुजरात के अंदर एक संघर्ष का नेतृत्व इस युवा अवस्था में 24-25 साल के युवा नरेंद्र मोदी ने किया।
आपातकाल के समय नरेंद्र मोदी के संघर्षों को उनके सहयोगियों और मित्रों ने अपने ढंग से याद किया है। उनमें शामिल हैं विष्णु पांड्या, किरोड़ी लाल मीणा, हंसमुख पटेल और प्रकाश मेहता।
12 मार्च को हम कुछ लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में, नरेंद्र भाई थे, देशमुख जी थे, शंकर सिंह वाघेला थे और मैं था। पांचों को इस ऐसी जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि भाई आप लोगों को बाहर रहना है और हमें ये साहित्य का, संगठन का, संघर्ष का, सत्याग्रह का ये सब काम करना है।
तो भूमिगत होकर पूरे देश की सामग्री का मुद्रण माननीय मोदी जी कराते थे अहमदाबाद, और देश भर में भेजना और वितरण करने की जिम्मेदारी मोदी जी की थी।
नाई की दुकान पे रखी है ये लिटरेचर, क्योंकि नाई की दुकान पर काफी कॉमन मैन भी आते हैं।
टंडन साहब, अगर आपातकाल के दौरान नेताओं के संघर्ष की हम बात करें, तो जैसा कि आपने चर्चा के शुरू में भी कहा कि गुजरात में उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संघर्ष था और उस संघर्ष को एक किताब में भी समाहित किया गया है, तो उस संघर्ष को संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा के नजरिए से आप कैसे देखेंगे?
जैसे मैंने शुरू में कहा कि नव निर्माण आंदोलन गुजरात में युवा आंदोलन था, छात्र आंदोलन था, तो उस समय जितने भी युवा थे उसमें, तब जो एक युवा संघ प्रचारक नरेंद्र मोदी थे वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन अगर हम बात करें द इमरजेंसी डायरीज की, जो पुस्तक आज प्रकाशित हुई है जिसको गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, उस डायरीज में आपातकाल के वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी की जो यात्रा का एक विस्तार से वितरण किया गया है, उसमें उनसे कई यादें भी ताजी की हैं। आज वो पुस्तक सामने आई है जनता की।
अशोक टंडन जी, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आपके अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
धन्यवाद।
आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का वो काला अध्याय है जिससे हर किसी को नफरत है। आज जब इसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब हम सबको ये गर्व होना चाहिए कि वर्तमान सरकार की नीतियों की वजह से आज लोकतंत्र सुरक्षित है, लोग खुशहाल हैं और संविधान में नागरिकों के लिए लिखित हर एक अधिकार लोगों को मिल रहे हैं। उस काले अध्याय की कड़वी यादों का घूंट पीकर हम सब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
अभी आप सुन रहे थे संविधान हत्या दिवस आपातकाल के 50 साल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।